हमारे लिटिल प्रिंस का नाम है आद्रिक, मतलब सनराइज, जिसके आने से हमारे भाई भाभी की जिंदगी में छाए गमों के काले बादलों को हटाकर खुशियों की उजली किरणों ने प्रवेश किया। फलक ने बुआ का फर्ज निभाते हुए अपने भतीजे का बड़ा ही खूबसूरत नाम रखा था और अब कमान बच्चों की मासी ने अपने हाथों में संभाल ली थी। हमारी क्यूट सी प्रिंसेस का नाम है आद्रिका, मतलब आकाशीय अप्सरा, जिसे भगवान ने अपने आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीजू और जीजी को भेंट दिया है। अंतरा ने अपनी बात खत्म की और सब नामों की तारीफ करने लगे। दोनों ही नाम बच्चों पर सूट कर रहे थे। सच में वो नन्हा राजकुमार उनकी जिंदगी का उजाला बनकर आया था और वो नन्ही परी भगवान का दिया वो अनमोल तोहफा था जो उन्हें इतने सालों की तपस्या के फलस्वरूप आशीर्वाद की तरह मिला था। सबके साथ साथ अक्षय और आहाना को भी नाम बहुत पसंद आए थे और उनके पीछे के अर्थ ने उनके दिलों में अलग जगह बना ली थी। हालांकि इन दिनों सब प्यार से अपने अपने अलग नाम रख चुके थे, पर ये नाम सारी उम्र चलने वाले थे। नामकरण के बाद पंडित जी को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करवाया गया। इतनी देर बैठने से आहाना को तकलीफ होने लगी थी तो उसे कमरे में भेज दिया गया था। बाकी सबके खाने पीने का भी बढ़िया इंतजाम किया गया था। उन चार पाँच लोगों के फ्लैट में आज खूब रौनक लगी थी और सभी बेहद खुश थे। सब थे वहाँ, बस रूपाली जी आज भी नहीं आई थी और कहीं ना कहीं आज उनकी कमी अक्षय को खल गई थी। इस खुशी में एक उदासी सी घुल गई थी और उसको बुरा लगना स्वाभाविक था। रूपाली जी उसकी माँ थी और उसके बच्चों का नामकरण था, वही बच्चे जिनकी उन्हें बहुत ख्वाहिश थी। इन बच्चों की दादी होने के हक से उन्हें यहाँ होना चाहिए था, दोनों को आशीर्वाद देना चाहिए था, पर वो आई ही नहीं। बाकी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया हो या नहीं, पर आहाना ने उसकी आंखों में आज इंतजार देखा था, अपनी माँ का इंतजार कि उसकी जिंदगी के इतने खास और खुशी के पल में उसकी माँ भी शामिल हो। दिन भर वहाँ मेला लगा था। नन्हा दक्ष अपने भाई बहन से बात करने के लिए मचल रहा था, उनके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। दिति भी इतने दिनों में बच्चों को पहचान गई थी और उन दोनों के लिए वो दोनों तो जीते जागते टैडी और डॉल जैसे थे, जबकि उन दोनों से छोटा अयान जब जब अपने मम्मी पापा को उन्हें प्यार करते देखता तो गला फाड़कर रोने लगता, अपने दादू को उन्हें प्यार करते देखता तो चिढ़ जाता और अपनी भाषा में चिल्लाने लगता, उनके पास जाने को मचलने लगता। इतनी सी उम्र में वो अपने मम्मी पापा और दादू को लेकर पोजेसिव था और उसकी मासूम हरकतों को देखकर सब मुस्कुरा उठते थे। शाम होते होते घर एक बार फिर खाली हो गया था, वही गिने चुने पांच लोग और दो नन्हे बानक। रूपाली जी रोज की तरह आज भी खा पी कर अपने कमरे में जा चुकी थी। इन दिनों अंतरा, अन्वय, अभिजीत जी के हॉस्पिटल और अक्षय के घर के लगभग रोज चक्कर लगा रहे थे, पर रूपाली जी ने ना तो उनके साथ जाने में दिलचस्पी दिखाई और ना ही वहाँ का हालचाल जानने की जरा भी उत्सुकता उनमें नजर आई। अभिजीत जी कमरे में पहुंचे तब तक वो सो चुकी थी तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रात गहराने लगी थी। दोनों बच्चों की नैपी चेंज करने के बाद अक्षय अपनी बेटी को तक रहा था जो दूध पीकर गहरी नींद में सो रही थी और आहाना आद्रिक को दूध पिला रही थी। अक्षय जी, आप ठीक हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद आहाना ने अक्षय से सवाल किया, जिसे सुनकर अक्षय निगाहें घुमाकर उसे देखने लगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है और आप अचानक मुझसे ये सवाल क्यों पूछने लगी? अक्षय उलझन भरी निगाहों से उसे देखने लगा, शायद उसके सवाल के पीछे की वजह समझने की कोशिश कर रहा था वो। आहाना के चेहरे पर गहरी उदासी, दुख, अफसोस और निराशा के भाव उभर आए। आज आपको मम्मी जी के आने का इंतजार था ना, पर वो नहीं आई। आज इतना खास दिन था आपका, इतनी खुशी का मौका था, सब इस खुशी में शामिल हुए, पर आपकी मम्मी नहीं आई। आपको उनकी कमी खली होगी, आपके बच्चों को आपकी माँ का आशीर्वाद और प्यार नहीं मिला, इससे आपका मन भी दुखी हुआ होगा। अगर आज हम सैगल निवास में होते तो आपकी खुशियों में ये कमी नहीं होती, आपकी मम्मी आपके पास होती, पर हमारी वजह से आपको अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। पहले पापा जी को मम्मी जी के कारण अपने परिवार से दूर होना पड़ा और हमारी वजह से आप भी अपनी फैमिली से जुदा हो गए। इतने महीनों से आप मम्मी जी से मिले तक नहीं, उनसे बात भी नहीं की और आज भी आप उनका इंतजार करते रह गए। अक्षय, जो अब तक उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी बात सुनकर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले तो वो हैरान परेशान सा उसे देखता रहा, फिर जैसे ही आहाना चुप हुई उसने गंभीरता से कहना शुरू किया, आहाना कुछ भी आपकी वजह से नहीं हुआ, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। आपके कहने पर मैंने घर छोड़ने का फैसला नहीं लिया था, बल्कि हालातों ने मुझे ऐसा कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था और ये फैसला मेरा अपना था, जिसके लिए अगर किसी को कसूरवार ठहराया जाना चाहिए तो वो मैं हूँ, आप नहीं। आपने कहा कि पहले पापा को मम्मी के कारण अपने परिवार से अलग होना पड़ा और अब आपके कारण मैं अपनी फैमिली से दूर हो गया, तो मैं आपको आज साफ साफ बता दूं कि मुझ में और पापा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वो अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण अपने परिवार से अलग हुए थे और मुझे मेरी मम्मी ने
मैंने ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। मेरी बीवी के कारण मैंने अपना घर नहीं छोड़ा था। इनफैक्ट आप तो सारी जिंदगी सब सह कर भी कभी मुझे अलग होने नहीं कहती, इतनी अच्छी हैं आप। पर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। मुझसे अपनी बीवी का अपनी माँ के हाथों और अपमानित होते नहीं देखा गया। आपको और तकलीफ नहीं पहुँचा सकता था मैं, इसलिए मैंने ये फैसला लिया जिस पर मुझे कोई अफसोस नहीं। रही बात मेरी मम्मी से ना मिलने और बात ना होने की, तो घर छोड़ने से पहले मैं उन्हें उनकी गलतियां दिखा कर आया था और जिस दिन वो यहाँ आकर अपने उन गुनाहों को स्वीकार कर लेंगी मैं बात कर लूंगा उनसे। जिस दिन वो आपसे माफ़ी मांगकर आपको पूरे दिल और सम्मान के साथ अपना लेंगी मैं उनसे सभी नाराजगी खत्म कर दूंगा। जिस दिन वो यहाँ आकर आपको उसी इज्जत के साथ वापस उस घर में ले जाएंगी जहाँ शादी के बाद मैं आपको लेकर गया था, उस दिन मैं उस घर में वापस लौट जाऊंगा। और अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो मैं यहाँ अपने इस छोटे से परिवार में भी बहुत खुश हूँ। क्या हुआ जो मेरे बच्चों को उनकी दादी का आशीर्वाद नहीं मिला? बाकी सबने तो उन्हें आशीर्वाद दिया है, और जिस दिन उनकी दादी की आंखों पर बंधी अहंकार की पट्टी खुल जाएगी उन्हें उनका आशीर्वाद और प्यार दोनों मिल जाएगा। इसके बाद उसने पल भर ठहरने के बाद आगे कहा, आज मुझे मम्मी का इंतजार था क्योंकि मुझे लगा कि अपने जिन पोते पोती के लिए वो तरस रही थी उन्हें देखने जरूर आएंगी, पर वो नहीं आई। तो भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आप इन बेकार की बातों के बारे में मत सोचिए। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। अक्षय ने गंभीरता से उसे समझाया और मुस्कुराते हुए उसे विश्वास दिलाने लगा कि वो सच में खुश है। आहाना ने आगे कुछ न कहते हुए उसकी बात पर अपनी सहमति जाहिर कर दी। अक्षय ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लिया और अपनी प्रिंसेस के पास लेट गया। आहाना भी यात्रिका को सुलाकर खुद उसके बगल में लेट गई। बेड के दोनों तरफ वो थे और बीच में उनके नन्हे नन्हे बच्चे सो रहे थे।